योएल की पुस्तक और लाओदीकिया की सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया संख्या 15।
संख्या 15।
मैं ये तर्क देता हूँ कि योएल के पहले अध्याय के प्रारंभिक चार पदों के महत्व को पहचानने की सर्वोत्तम आशा रखने के लिए चार पीढ़ियों के प्रतीक का उत्तर वर्षा के संदेश से संबंध समझना आवश्यक है। योएल दाख की बारी का गीत गाता है, पर उसके गीत का प्रारंभिक पद्यांश वाचा और चार पीढ़ियों के बीच का भविष्य सूचक संबंध है।
और उसने अब्राम से कहा, निश्चय जान ले कि तेरी संतति ऐसे देश में परदेशी होगी जो उनका नहीं है, और वे उनकी सेवा करेंगे, और वे उन्हें 400 वर्ष तक सताएंगे, और जिस राष्ट्र की वे सेवा करेंगे उसे भी मैं दंड दूंगा, और उसके बाद वे बहुत धन संपत्ति के साथ बाहर निकलेंगे, और तू शांति से अपने पितरों के पास जाएगा, तू अच्छी वृद्धावस्था में दफनाया जाएगा। परंतु चौथी पीढ़ी में वे फिर यहाँ लौटेंगे, क्योंकि अमोरियों का अधर्म अभी पूरा नहीं हुआ है। उत्पत्ति 15:16।
ये खंड वो भविष्यवाणी है जो मूसा के जीवन के माध्यम से पूरी हुई। जब योएल की पुस्तक बढ़ते हुए विनाश की चार पीढ़ियों का उल्लेख करके दाख की बारी के गीत की शुरुआत करती है, तब वो योएल की पुस्तक को भविष्य सूचक चौथी और अंतिम पीढ़ी से जोड़ती है। वो पीढ़ी पतरस की चुनी हुई पीढ़ी है, जिन्हें अंधकार से बुलाकर उसकी अद्भुत ज्योति में लाया गया है। उनकी तुलना उनके पीढ़ीगत समकक्ष से की जाती है, जिन्हें सांपों की संतान के रूप में दर्शाया गया है। वो चौथी और अंतिम पीढ़ी यूहन्ना द्वारा प्रतिनिधित्व की गवाही है, जो 144,000 का प्रतीक है, जो बुलाए गए, चुने हुए और विश्वास योग्य है।
नेवर एलन को बुलाए गए आधी रात की पुकार में, चुने गए और रविवार के कानून के संकट में निष्ठावान रहे, जैसे लेवीय हारून और यारोबाम के सोने के बछड़े वाले विद्रोहों में निष्ठावान रहे थे। मलाकी अध्याय 3 में जो आत्माएं चांदी की तरह शुद्ध की जाती हैं, वे लेवीय हैं, जिन्हें आधी रात की पुकार के संदेश के दौरान चुना जाता है, क्योंकि मुहरबंदी पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के साथ और उसी के द्वारा संपन्न होती है।
पिछले लेख में हमने मूसा के इतिहास के कुछ पहलुओं को सामने रखा, जिन्हें सिस्टर व्हाइट बाइबल की भविष्यवाणी का अल्फा बताती है, जो भविष्यवाणी की दृष्टि से मसीह, जो बाइबल की भविष्यवाणी के अमजी, जो बाइबल की भविष्यवाणी के ओमेगा है, से जुड़ते हैं। मूसा नींव का पत्थर है और मसीह शीर्ष पत्थर है। दोनों पाप से मुक्ति के प्रतीक हैं, जैसा कि मूसा के नेतृत्व में हुए मिस्र से निर्गमन में प्रदर्शित हुआ। फिर भी मूसा के हाथों प्रकट हुई परमेश्वर की शक्ति की सारी प्रकटनाएं तब बहुत पीछे रह गईं, जब मसीह ने एक सप्ताह के लिए बहुतों के साथ वाचा की पुष्टि की। मूसा अल्फा है और मसीह ओमेगा है, और ओमेगा संख्या 22 है तथा अल्फा संख्या 1 है।
मूसा के विषय में विचार करने पर हम पाते हैं कि उनकी भविष्यदर्शी गवाही में व्याप्त उद्धार का विषय जल के संदर्भ में स्थापित है। जन्म के समय नील नदी के जल से उनका बचाया जाना जहाज में नूह का प्रतिरूप है। लाल समुद्र पर हुआ बपतिस्मा नूह और जहाज के भीतर के 8 जनों से मेल खाता है, और ये आगे चलकर यर्दन नदी पर यहोशू के बपतिस्मा से मेल खाता है, जिसे मसीह ने ठीक उसी स्थान पर दोहराया। मूसा की गवाही नील नदी पर हुए उद्धार से शुरू होती है और यर्दन नदी के तट पर आकर समाप्त होती है। मसीह का बपतिस्मा उनकी मृत्यु तक के 3.5 वर्षों की साक्षी सेवा के लिए उनका अभिषेक था, जिसका प्रतिनिधित्व प्रारंभ में उनके बपतिस्मा में ही किया गया। उनके पुनरुत्थान पर कुछ बूंदें थीं, जब तक कि पेंतेकोस्ट पर पूरा उंडेला न गया।
मानव जाति के प्रति परमेश्वर की वाचा प्रतिज्ञा नूह से आरंभ होती है, और इब्राहिम के द्वारा चुनी हुई प्रजा के लिए उसकी वाचा प्रतिज्ञा मूसा के साथ पूरी हुई। अल्फा मूसा ओमेगा यीशु के प्रतिरूप थे, जो आकर वाचा की पुष्टि बहुतों के साथ करेंगे, न कि केवल चुनी हुई प्रजा के साथ। मसीह के प्रतिरूप के रूप में मूसा का जन्म नूह को दी गई वाचा के साथ मेल खाता है, जिसमें सब लोगों के लिए चिन्ह के रूप में इंद्रधनुष दिया गया। मूसा चुनी हुई प्रजा को दी गई वाचा के साथ भी मेल खाते हैं, जिसमें चुनी हुई प्रजा के लिए चिन्ह खतना था। मूसा का वाचा संबंधी कार्य बहुतों के साथ था, केवल चुनी हुई प्रजा के साथ ही नहीं,
यदि ऐसा न होता तो वे मिश्रित भीड़ से निरंतर त्रस्त न रहते। मूसा के जीवन में निरंतर दिखाए गए विविध उद्धार के जल के मध्य यर्दन नदी पर बेथबरा में हुआ बपतिस्मा प्रतिज्ञात देश में प्राचीन इसराइल के वाचा इतिहास की शुरुआत को उसके इतिहास के अंत से जोड़ता है। उस सप्ताह में जब मसीह ने बहुतों के साथ वाचा की पुष्टि की, मसीह का बपतिस्मा प्राचीन इसराइल के बपतिस्मे से मेल खाता है और दोनों इतिहास उसके पुनरुत्थान की ओर संकेत करते हैं। जब उसने कुछ वर्षा बूंदें फूंकी, 50 दिन बाद पेंटेकोस्ट पर होने वाली प्रचुर वर्षा से पहले, मूसा से मसीह तक, अल्फा से ओमेगा तक का पूरा क्रम उद्धार के जलों में चित्रित है।
इन शिष्यों को शिक्षा देते हुए यीशु ने अपने मिशन की गवाही के रूप में पुराने नियम के महत्व को दिखाया। अब बहुत से स्वयं को मसीही कहने वाले पुराने नियम को त्याग देते हैं, ये कहकर कि उसका अब कोई उपयोग नहीं रहा। परंतु मसीह ने ऐसा नहीं सिखाया। उन्होंने उसे इतना महत्व दिया कि एक बार उन्होंने कहा, यदि वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि कोई मृतकों में से भी जी उठे तो भी वे न मानेंगे। लूका 16:31। ये मसीह की वाणी है जो पितृपुरुषों और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा आदम के दिनों से लेकर समय के समापन के दृश्यों तक बोलती आई है। उद्धारकर्ता पुराने नियम में उतनी ही स्पष्टता से प्रकट होता है जितनी नए नियम में। भविष्य सूचक अतीत से आने वाला प्रकाश ही मसीह के जीवन और नए नियम की शिक्षाओं को स्पष्टता और सौंदर्य के साथ उजागर करता है। मसीह के चमत्कार उसकी दिव्यता का प्रमाण है, परंतु इससे भी अधिक प्रबल प्रमाण कि वो संसार का उद्धार करता है, पुराने नियम की भविष्यवाणियों की तुलना नए नियम के इतिहास से करने पर मिलता है। युगों की अभिलाषा 7:99।
योएल की पुस्तक को संबोधित करने वाले लेखों में हम पुराने नियम की भविष्यवाणियों की नए नियम के इतिहास के साथ तुलना करते आए हैं और उनकी तुलना आधुनिक आध्यात्मिक इसराइल के इतिहास के साथ भी करते आए हैं। चाहे बात पुराने या नए नियम की हो या 70 हल्लांडे में आरंभ हुए 3 स्वर्गदूतों के इतिहास की, उन सभी को मसीह की वाणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बाइबल और भविष्यवाणी की आत्मा की लिखित गवाही मसीह की वाणी है और मसीह की वाणी उसी की वाणी है जो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन की आवाज उसके लिखित वचन में व्यक्त उसका संदेश है। अंतिम दिनों में उसका संदेश उत्तर वर्षा का संदेश है, जिसमें प्रथम वर्षा शामिल है और योएल के अनुसार उसके बाद प्रथम और उत्तर वर्षा होती है। प्रकाशित वाक्य के योहन उन 144,000 का प्रतिनिधित्व करता है जो पुराने मार्गों पर लौटते हैं, क्योंकि वो अपने पीछे एक आवाज सुनता है। पीछे की ये आवाज मसीह की वही आवाज है जो आदम के दिनों से चली आ रही है।
और जो मुझसे बातें कर रही थी, उस आवाज को देखने के लिए मैं मुड़ा और मुड़कर मैंने सोने के साथ दीपदान देखे। प्रकाशित वाक्य 1:12।
ये पद पहले अध्याय में एक विराम को दर्शाता है, क्योंकि पिछले पद तक यूहन्ना पटमोस नामक द्वीप में था, परंतु 12वें पद में वो मुड़ता है और उसके बाद से यूहन्ना स्वर्गीय पवित्र स्थान में है। जब वो मुड़ता है तो ऐसा इसलिए है कि 10वें पद में उसने पीछे से एक आवाज सुनी थी।
मैं प्रभु के दिन आत्मा में था और मेरे पीछे से तुरही के समान एक बड़ी आवाज सुनी जो कहती थी, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम हूँ, और जो कुछ तू देखता है उसे एक पुस्तक में लिख और उसे एशिया में जो 7 कलीसियाएं हैं उनके पास भेज, इफिसुस, स्मिरना, पर्गमुस, थुआतीरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया और लौदिकिया। प्रकाशित वाक्य 1:10-11।
यूहन्ना उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने पीछे से आती मसीह की आवाज सुनते हैं। वो यिर्मयाह की तुरही की वो पुकार सुनता है जो पुरानी राहों पर लौटने के लिए है, वे राहें जिन पर दुष्ट चलने से इंकार कर चुके थे, और वो चेतावनी की तुरही जिसे वे सुनने से इंकार करते हैं। यूहन्ना ने सुना और उसके पीछे की आवाज ने स्वयं को अल्फा और ओमेगा, वो जो पुरानी राह के साथ नई राह को भी दर्शाता है, के रूप में बताया।
और 7 दीपदानों के बीच में एक जो मनुष्य के पुत्र के समान था, पैरों तक का वस्त्र पहने हुए और उसके वक्ष पर सोने का पट्टा बंधा हुआ था, उसका सिर और उसके बाल ऊन की तरह बर्फ के समान श्वेत थे और उसकी आंख आग की ज्वाला जैसी थी और उसके पांव भट्टी में तपाए हुए उत्तम पीतल के समान थे, और उसकी वाणी बहुत से जलों के शब्द के समान थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 तारे थे, और उसके मुंह से एक तीक्ष्ण दोधारी तलवार निकलती थी, और उसका मुखमंडल ऐसा था जैसा सूर्य अपनी शक्ति में चमकता है। प्रकाशित वाक्य 1 तथा 13 तौसुलु।
आयत 12 में यूहन्ना मुड़कर देखता है और मसीह का एक दर्शन देखता है, जिसे सिस्टर वाइट दानियेल को हुए मसीह के दर्शन के साथ मिलाती हैं। यही दर्शन यशाया, यिर्मयाह, यहिज्गेल और पौलुस को भी हुआ था।
मैं आकुल लालसा के साथ उस समय की प्रतीक्षा करता हूँ जब पेंटिकोस के दिन की घटनाएं उस अवसर से भी कहीं अधिक सामर्थ्य के साथ फिर दोहराई जाएंगी। यूहन्ना कहता है, मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके पास महान सामर्थ्य था, और पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशित हो गई। तब पेंटिकोस के समय की ही तरह लोग अपनी अपनी भाषा में उन्हें सुनाया गया सत्य सुनेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही भाषा में। परमेश्वर हर उस आत्मा में जो ईमानदारी से उसकी सेवा करना चाहती है नया जीवन फूंक सकता है। आदम और यहिज्केल की हड्डियों की घाटी और वेदी से लिए हुए दहकते अंगारे से होंठों को छू सकता है यशाया, और उन्हें अपनी स्तुति में वाक्पटु बना सकता है। हजारों स्वर परमेश्वर के वचन के अद्भुत सत्यों को प्रकट करने की सामर्थ्य से ओतप्रोत हो जाएंगे। हकलाई हुई जीप खोल दी जाएगी यशाया की दूसरी भाषा, और संकोची जनों को सत्य की साहसी गवाही देने के लिए बलवान बनाया जाएगा। प्रभु अपनी प्रजा की सहायता करे कि वे आत्मा के मंदिर को हर प्रकार की अशुद्धता से शुद्ध करें, मलाकी के लेवियों और उसके साथ ऐसा निकट संबंध बनाए रखें कि जब अंतिम वर्षा उंडेली जाए तो वे उसके भागीदार हों। रिव्यू एंड हेराल्ड, 20 जुलाई 1886।
जिस दर्शन पर हम विचार कर रहे हैं उसमें मसीह की वाणी का वर्णन शामिल है। जब यूहन्ना मुड़कर मसीह की वाणी सुनता है तो वो बहुत से जल के शब्द के समान होती है। जब मसीह की वाणी मनुष्यों या चुनी हुई प्रजा के साथ अपनी वाचा की बात करती है तो वो बहुत से जल से संबद्ध होती है। दानियेल के अध्याय 7-9 का संदेश 17 नठेओं में मुहर से खोला गया, और फिर 1990 नहिस में दानियेल के अध्याय 10-12 का संदेश खोला गया। 17 नरहठई उलाई नदी की वाणी से संबद्ध है, और 1990 नहिस में हिद्दकेल नदी की वाणी है।
जो प्रकाश दानियेल को परमेश्वर से मिला था वो विशेष रूप से इन अंतिम दिनों के लिए दिया गया था। शिनार की महान नदियों उलय और हिद्दके के किनारों पर उसने जो दर्शन देखे थे वे अब पूरी होने की प्रक्रिया में हैं, और पूर्व कथित सभी घटनाएं शीघ्र ही घटित होंगी। टेस्टिमनीज़ टू मिनिस्टर्स 152।
जॉर्डन नदी प्राचीन इसराइल के अल्फा वाचा के इतिहास और ओमेगा वाचा के इतिहास के बीच की कड़ी है। जॉर्डन शब्द का अर्थ अवरोही है, और ये मसीह महान अवरोही का प्रतिनिधित्व करता है।
तुम में वही मनोभाव हो जो मसीह यीशु में भी था, जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के बराबर होने को लूट समझा नहीं, परंतु उसने अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों के समान बन गया, और मनुष्य के रूप में पाया जाने पर उसने अपने आप को दीन किया और मृत्यु तक, हाँ क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। फिलिप्पियों 2:5-9।
यर्दन नदी मसीह महान अवरोही का प्रतिनिधित्व करती है, और यर्दन परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के अल्फा और ओमेगा के इतिहास के बीच का संबंध है, जिन्हें देखरेख के लिए एक दाख की बारी सौंपी गई थी। मूसा के उद्धार के जल मसीह की वाणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई आत्मा यदि केवल पीछे मुड़ जाए तो वो उनके पीछे की वाणी सुन सकती है, और तब जो वाणी वे सुनेंगे वो है अनेक जलों का शब्द। नूह के जल प्रलय से लेकर 70 ईस्वी में यरूशलेम के विनाश तक उद्धार के जल परमेश्वर की वाचा प्रजा के लिए मार्ग चिह्नों के रूप में स्थापित किए गए हैं। वे मार्ग चिह्न परमेश्वर की अंतिम वाचा प्रजा 144,000 के आंतरिक इतिहास का प्रतीक है। यर्दन नदी को मिलने वाला जल हेरमोन पर्वतों में संचित ओस और हिम से आता है। यही पर्वत यर्दन नदी की उद्गम जलधाराएं बनाते हैं।
दाऊद का एक आरोहण गीत। देखो भाइयों का एकता में साथ साथ रहना कितना भला और मनोहर है। वो उस अनमोल तेल के समान है जो सिर पर डाला गया और दाढ़ी पर, हाँ, हारून की दाढ़ी पर बहता हुआ उसके वस्त्रों के छोर तक उतर आया, हरमून की ओस के समान और उस ओस के समान जो सियोन के पहाड़ों पर उतरती है, क्योंकि वहां यहोवा ने आशीष की आज्ञा दी है, अर्थात सदैव का जीवन। भजन संहिता 33:1-3।
वे जलधाराएं पैन की गुफा भी बनाती हैं, एक गहरा कुंड जो एक गुफा के भीतर स्थित है, जो दानियल 11:13-15 के पानिम तथा पतरस के दिनों के कैसरिया फिलिप्पी में था। यर्दन नदी के उद्गम के जल भी पैन की गुफा का शैतानी कुंड बनाते हैं। बहुत से जलों की ध्वनि ये संकेत करती है कि मसीह और शैतान के बीच महान विवाद का आरंभ हेरमोन पर्वतों की उच्च शिखरों में हुआ था।
और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मत्ती 7:7।
हेरमोन नाम का अर्थ पवित्र, अभिषिक्त, समर्पित या अलग रखा हुआ है और ये स्वर्ग का प्रतीक है, समस्त जल का स्रोत और महान विवाद की शुरुआत, जिसका प्रतिनिधित्व नरक के द्वार द्वारा किया गया। ये वही नाम था जो यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी में पान की गुफा को दिया। उसी संदर्भ में शमोन बरियोना का नाम बदलकर पतरस रखा गया। शमोन का अर्थ जो सुनता है और बरियोना का अर्थ कबूतर का पुत्र है। शमोन उस आत्मा का प्रतीक था जिसने यीशु के बपतिस्मा का वह संदेश सुना जो पवित्र आत्मा द्वारा कबूतर के रूप में दर्शाया गया था, और जो मसीह के बपतिस्मा का संदेश सुनता है वो बदलकर पतरस बनता है जो 145,000 का प्रतिनिधित्व करता है। पतरस पर पाननियम में रहते समय मुहर लगाई गई, इसका वर्णन दानियल 11:13-15 में है। हेरमोन के जल से निकलने वाली यर्दन नदी, जो मसीह महान अवरोही का प्रतीक है, अपनी यात्रा मृत सागर पर समाप्त करती है। स्वर्ग से, जहां जीवन की ओस का उद्गम होता है, मसीह क्रूस की मृत्यु तक उतर आए, जिसका प्रतीक मृत सागर है। मृत सागर का तट पृथ्वी की सतह पर स्थित सबसे निम्न स्थल है। उतरती हुई यर्दन नदी पृथ्वी के सबसे निम्न जलस्तर तक उतरती है, जैसे मसीह क्रूस पर अपनी मृत्यु तक उतरे। जीवन के जल से मृत्यु के जल तक यर्दन नदी स्वर्ग से क्रूस तक मसीह के अवरोहण का प्रतीक है। बाइबल की भविष्यवाणी के महत्वपूर्ण विषय जल से जुड़े हैं, और बाइबल की भविष्यवाणी मसीही की वाणी है जो बहुत से जलों की ध्वनि है। बाबुल की व्यभिचारिणी बहुत से जलों पर बैठी है और फरात के जल सूख जाते हैं ताकि पूरब के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो, और व्यापारी और राजा दूर खड़े होकर विलाप करते हैं क्योंकि तर्शीश के जहाज समुद्रों के बीच नष्ट कर दिए गए हैं, और मृत्यु की वो वाचा जिसे इफ्रेम के मद्यपियों ने झूठ के नीचे छिपकर स्वीकार किया था, पापल रविवार के कानून की प्रचंड बाढ़ से निरस्त कर दी जाती है। जब सिस्टर व्हाइट शिनार की महान नदियों का उल्लेख करती हैं, तो वो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों की ओर संकेत कर रही होती है। उन नदियों का पता एदन की वाटिका तक लगाया जा सकता है, जहां वे एदन से निकलने वाली तीसरी और चौथी नदी है।
और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है, वो अशूर के पूरब की ओर बहती है, और चौथी नदी यूफ्रात है। उत्पत्ति 2:14।
हिद्देकेल टाइग्रिस ही है, और बेशक यूफ्रेटिस तो यूफ्रेटिस ही था, हालांकि आधुनिक इतिहासकार और धर्मशास्त्री असहमत हैं। वे जोर देकर कहते हैं कि उलाई कोई महान नदी नहीं थी, बल्कि फारस में केवल एक मानव निर्मित नहर थी, शिनार में नहीं। वही मानव अधिकारी ये बताते हैं कि शिनार से संबंधित उल्लेखनीय नदियां केवल दो ही थीं, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, और भविष्यवक्त्री कहती हैं कि उलाई और हिद्देकेल शिनार की महान नदियां थीं।
जल के संदेश के संबंध में भविष्यवक्त्री के वचन आधुनिक विशेषज्ञों का विरोध करते हैं, जैसे प्राचीन विशेषज्ञों ने भी किया था, जिन्होंने नूह के जल के संदेश का विरोध किया था। हमें बताया गया है कि दो नदियों द्वारा निरूपित दो दर्शन पूरे होने की प्रक्रिया में हैं, अतः शिनार की दो महान नदियों द्वारा दिए गए उन दोनों दर्शनों में जो कुछ भी निरूपित किया गया है वो शीघ्र ही पूरा होगा। उन नदियों से संबंधित संदेश मसीही की वाणी है, क्योंकि उनकी वाणी अनेकों जलों के समान है। टाइग्रिस
और यूफ्रेटिस एक प्रमुख भविष्य सूचक विषय का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनकी गवाही उस वाचा से संबंधित है जिसे अल्फा मूसा ने प्रतिपादित किया था, जो वही वाचा है जिसे ओमेगा मसीही ने पुष्ट किया। भविष्यवाणी में दजला अश्शूर का और फुरात बाबुल का प्रतीक है। इस संदर्भ में वे दो शक्तियां हैं जिन्हें यिर्मयाह ने सिंहों के रूप में प्रस्तुत किया है, जो पहले उत्तरी राज्य को और फिर दक्षिणी राज्य को बंधुआई में ले जाएंगी।
इसराइल तितर बितर की हुई भेड़ है, सिंहों ने उसे खदेड़ दिया है। पहले तो अश्शूर के राजा ने उसे निगल लिया और अंत में इस बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने उसकी हड्डियां तोड़ डाली। यिर्मयाह 50:17।
असीरिया और बाबुल दोनों इसराइल के दोनों राज्यों के संदर्भ में उत्तरी शत्रु थे और इसलिए वे उत्तर के मिथ्या राजा पापाई शक्ति के प्रतिरूप हैं। एक ही सांस्कृतिक परिवेश से उभरी इन दोनों शक्तियों ने मूल रूप से वही राजनीतिक और धार्मिक परंपराएं अपनाई, परंतु असीरिया की राजनीतिक सर्वजंग बे राज्य कला पर बल था, जबकि बाबुल में बहुत समान होते हुए भी धर्मशासन पर जोर था। मूर्ति पूजक रोम और पापाई रोम कुछ स्तरें पर एक जैसे हैं, फिर भी मूर्ति पूजक रोम राज्य कला का और पापाई रोम धर्मशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। भविष्यदर्शी संदर्भ में बाबुल के संबंध में असीरिया राज्य कला का राज्य था जिसके बाद बाबुल आया, एक समान शक्ति जिसने धर्म शासन पर जोर दिया। असीरिया मूर्ति पूजक रोम का प्रतिनिधित्व करता था और बाबुल पापाई रोम का प्रतिनिधित्व करता है। इन चारों शक्तियों ने परमेश्वर के पवित्र स्थान और उसकी सेना को पददलित किया। असीरिया का संबंध टाइग्रिस से है और बाबुल का यूफ्रेटिस से। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूफ्रेटिस के सूख जाने के अनुरूप है, ताकि पूर्व के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो, जैसा कि बाबुल को गिराने के लिए यूफ्रेटिस की धारा मोड़ देने वाले कायरस के कार्य द्वारा प्रतिरूपित किया गया है। बाबुल यूफ्रेटिस है, असीरिया टाइग्रिस है।
भविष्यवाणी में उत्तर का राजा रविवार के कानून के संकट के दौरान संसार पर विजय प्राप्त करता है और उसके बाद गिर पड़ता है, परंतु इस विजय को प्रायः प्रचंड बाढ़ के रूप में चित्रित किया जाता है। असीरिया और बाबुल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए उत्तर के राजा की कथा का प्रतीक नदियां, क्योंकि ये कथा अनेक जलों की ध्वनि द्वारा कही जाती है।
दो नदियों के बीच का देश मेसोपोटामिया कहलाता है, जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच का देश। ये दो नदियां उस उत्तरी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसका उपयोग परमेश्वर अपने धर्मत्यागी ततरबितर करके ताड़ना देने के लिए करता है। बहुत से जलों की ध्वनि के उपप्रवाहों में से एक पद्दन अराम नाम में मिलता है, जिसका उल्लेख शास्त्रों में केवल 10 बार हुआ है। इसका पहला उल्लेख वाचा के संदर्भ में है, क्योंकि ये इसहाक की पत्नी रिबका की वंश परंपरा की पहचान कराता है। इस पद में लिखा है,
और इसहाक 40 वर्ष का था जब उसने रिबका से विवाह किया, जो पद्दन अराम के अरामी बतुएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी।
मूसा के 3 साक्षियों के द्वारा ये दिखाया गया है कि 40 वर्षों का अंत कादेश 1863 और रविवार के कानून की ओर ले जाता है। इसहाक का विवाह एक वाचा विवाह है, जो रविवार के कानून के समय मसीह के 144,000 से विवाह का प्रतिरूप है, जो 1863 है, जो कादेश है, जो 40 वर्षीय वाचा इतिहास का अंत है। रिबका एक सीरियाई की बेटी थी और लाबान एक सीरियाई की बहन थी, जिसने वाचा इतिहास की अगली पीढ़ी में इसहाक के पुत्र याकूब के साथ एक वाचा तोड़ी।
बतुएल का अर्थ उजाड़ का घर या उजाड़ने वाले का घर, इसलिए रिबका उजाड़ने वाले के घर की बेटी थी। सीरिया का अर्थ ऊंचा प्रदेश और पठार है, और पदान अराम का अर्थ मेसोपोटामिया अर्थात बीच का देश होता है। रिबका उन सीरियाइयों की वंशरेखा से थी जो मेसोपोटामिया से आए थे। वह ऊंचा प्रदेश जो असीरिया की टाइग्रिस और बाबिलोन की यूफ्रेटिस के बीच है। ये दोनों नदियां उन सिंहों का प्रतिनिधित्व करती है जिनका उपयोग प्रभु ने अपनी धर्मत्यागी भेड़ों को तितर बितर करने के लिए किया। इसहाक और रिबका के विवाह में उजाड़ने वालों का घर परमेश्वर के घर से जुड़ गया। ये कोई संयोग नहीं कि पदान अराम के पहले उल्लेख साथ ही इन दो नदियों का
जो भविष्यवाणी के उत्तर के राजा का प्रतिनिधित्व करती है और जिन्हें उफनती बाढ़ के रूप में दिखाया गया है, पहला उल्लेख उत्पत्ति 25:20 में होता है।
उजाड़ के घर का परमेश्वर की वाचा की प्रजा से संबंध तब भी जारी रहता है जब याकूब एसाव से भागकर अपने मामा लाबान के घर पहुंचता है और वहां अगला वाचा संबंधी विवाह सुनिश्चित करने के लिए 10:20 की दो अवधियों तक सेवा करता है। एक विवाह इसराइल के उत्तरी राज्य के तितर बितर होने पर समाप्त होता है और दूसरा विवाह दक्षिणी राज्य के तितर बितर होने पर। जब उन दोनों राज्यों की अपनी अपनी तितर बितर होने की अवधि 1798 और 1844 में समाप्त हुई, तब वो विवाह पूरा हुआ जिसके लिए याकूब ने 10:20 की दो अवधियों तक परिश्रम किया था, क्योंकि 10 अक्टूबर 1844 को दूल्हा विवाह के लिए आया।
तो क्या मसीह ने लेआ से विवाह किया, जिसका अर्थ थकी और तंतात है, या उन्होंने राहेल से विवाह किया, जिसका अर्थ एक अच्छा यात्री है? लेआ और राहेल यात्रारत कुवारियों की दो श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करती है, एक कुवारी जो थकती जाती है और एक कुवारी जो अच्छी तरह यात्रा करती है, जो 22 अक्टूबर 1844 को याकूब से विवाह करने के मार्ग पर है।
उनके पीछे मार्ग के आरंभ में एक उज्ज्वल प्रकाश स्थापित किया गया था, जिसके विषय में एक स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि वो मध्य रात्रि की पूर्वकाल था। ये प्रकाश समस्त मार्ग पर चमकता रहा और उनके पांवों के लिए ज्योति देता रहा, ताकि वे ठोकर न खाएं। यदि वे अपनी आंखें यीशु पर टिकाए रखते जो उनके ठीक आगे थे और उन्हें नगर की ओर ले जा रहे थे, तो वे सुरक्षित थे। परंतु शीघ्र ही कुछ थक गए और कहने लगे कि नगर बहुत दूर है, और उनका अनुमान था कि वे अब तक उसमें प्रवेश कर चुके होते। तब यीशु अपना महिमा में दाहिना भुजा उठाकर उन्हें प्रोत्साहित करते और उनकी भुजा से एक प्रकाश निकलता जो आगमन दल पर लहराता था, और वे पुकार उठते, हल्लेलुया। अन्य लोग अविवेकपूर्वक अपने पीछे की ज्योति का इनकार कर देते और कहते कि उन्हें इतनी दूर तक परमेश्वर ने मार्गदर्शन नहीं किया था। उनके पीछे की ज्योति बुझ गई, उनके पांव पूर्ण अंधकार में पड़ गए और वे ठोकर खाकर लक्ष्य और यीशु को दृष्टि से खो बैठे और मार्ग से गिरकर नीचे अंधकार में और दुष्ट संसार में जा पड़े। प्रारंभिक लेखन 15।
एक ओरा प्रतापशे एक प्रतापशे इन पांचों पर रेस्पिक टैग लिया, ताकि 100 साल तक शुरुआत में प्रवेश किया। 22 अक्टूबर 1844 के विवाह ने उपासकों के दो वर्गों को अलग कर दिया, जिनका प्रतिनिधित्व राहेल और लिया करती थी। राहेल उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसने 22 अक्टूबर 1844 के विवाह की ओर जाने वाले मार्ग पर सफलतापूर्वक यात्रा की, लेकिन लिया का वर्ग क्लांत हो गया। तब उन्हें अलग कर दिया गया और तीसरे स्वर्गदूत की परीक्षण प्रक्रिया वहीं से आरंभ हुई जहां मध्यरात्रि की पुकार की परीक्षण प्रक्रिया समाप्त हुई थी। विवाह आरंभ हो चुका था और उसके बाद उसे पूर्ण किया जाना और परखा जाना था। 1846 में विवाह का परपूर्णन हुआ और तीसरे स्वर्गदूत की परीक्षण प्रक्रिया आरंभ हुई। 1849 और 1850 में प्रभु अपने शेष जन को एकत्र करने के लिए दूसरी बार अपना हाथ बढ़ा रहे थे। तब हबजक की दूसरी तालिका इतिहास में स्थापित की गई, जैसा कि आज्ञाओं की दूसरी पत्थर की पट्टिकाओं द्वारा प्रतिरूपित किया गया था। मूसा द्वारा पहली पट्टिकाएं तोड़ देने के बाद दूसरी पट्टिकाएं प्रस्तुत की गईं। 1850 की तालिका ने 1843 वाली का स्थान लिया और 1850 में परमेश्वर की नई वाचा की दुल्हन के रूप में प्राचीन इसराइल की परीक्षा बा, कादेश और 1863 की ओर आगे बढ़ती रही। 1885 में उन दो नदियों का अधिक जल हायरम एडसन की कलम के माध्यम से आया। एडसन की कलम से आया सात काल पर का जो प्रकाश था, वही वो प्रकाश था जिसे उन दो नदियों ने दर्शाया, जिन्होंने अपनी भविष्यवाणी पूर्ण गवाही अदन की वाटिका में आरंभ की थी। अदन की वाटिका परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध मानव जाति के विद्रोह का प्रतीक है, और वहीं से उलाई और हिद्देकेल नदियों का जल अपनी यात्रा आरंभ करता है। वे वाचा के इतिहास से होकर यात्रा करती हैं, क्योंकि वही वाटिका जो विद्रोह का प्रतीक है
वो स्थान भी है जहां एक मेमने की बलि दी गई थी, ताकि आदम और हव्वा पर लगे अंजीर के पत्तों के स्थान पर वस्त्र प्रदान किए जाए। वाचा का इतिहास आदम और परमेश्वर के बीच जीवन की वाचा से आरंभ होता है। जीवन के वृक्ष द्वारा प्रतीकित वो वाचा आदम और हव्वा द्वारा तोड़ दी गई, और इससे एक नई जीवन की वाचा का आरंभ हुआ जब जगत की उत्पत्ति से वध किए गए मेमने ने उस नग्न और खोए हुए युगल के लिए वस्त्र प्रदान किए। उस वाटिका से बहने वाली वे दो नदियां अंततः उन शक्तियों के प्रतीक बन जाती हैं जिनका उपयोग परमेश्वर अपनी ताड़ना की दंड छड़ी के रूप में करता है।
हाय अश्शूर, वो मेरे क्रोध का डंडा है और उसके हाथ में जो लाठी है वो मेरे प्रकोप की है। मैं उसे कपटी जाति के विरुद्ध भेजूंगा और अपने क्रोध के लोगों के विरुद्ध उसे आज्ञा दूंगा कि वो लूट ले और शिकार पकड़ ले और उन्हें सड़कों की कीचड़ की तरह रौन डाले। यशाया 10:5-6।
वे दो नदियां एदेन से निकलकर रिबका की वंशावली और इसहाक से उसके वाचा विवाह में और आगे याकूब तक प्रवाहित हुई, जहां उन दोनों नदियों के जल को 7 समयों के 2 पृथक कालखंडों के रूप में दर्शाया गया है। फिर वही दो नदियां दानियल की अंतिम 6 अध्यायों में प्रवाहित होती हैं, जहां प्रत्येक नदी 3 अध्यायों का प्रतिनिधित्व करती है। एक नदी उस ज्ञान वृद्ध और एक नदी दूसरे लेव मरने की जद सोशल उस नसौल अपने में मुहर खोले जाने पर प्रकट हुई, और दूसरी नदी उस ज्ञान वृद्ध का प्रतिनिधित्व करती है जो अध्याय 10, 11 और 12 में मुहर खोले जाने पर प्रकट हुई। अध्याय 7, 8 और 9 को उलाई के दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और अध्याय 10, 11 और 12 में मसीह को उसी प्रकार चित्रित किया गया है। दोनों नदी के दर्शनों में जो 3-3 अध्यायों में प्रस्तुत है, मसीह को जल पर खड़ा हुआ दिखाया गया है।
और ऐसा हुआ कि जब मैं दानियल दर्शन देख चुका था और उसके अर्थ की खोज कर रहा था, तब देखो मेरे सामने मनुष्य के समान रूप का एक व्यक्ति खड़ा था, और मैंने उलाई के तटों के बीच से एक मनुष्य की आवाज सुनी जो पुकार कर कह रही थी, गब्रियल, इस मनुष्य को ये दर्शन समझा दे। दानियल 8:15-16।
अध्याय 10 में मसीह का दर्शन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में यूहन्ना ने जो दर्शन देखा था उसके समान है, और दानियल के अध्याय 8 के दर्शन में पलमूनी जल के ऊपर है, जैसे वो अध्याय 12 में था जहां वो सन के वस्त्र पहने हुए था।
गैब्रियल के आगमन के समय नबी दानियल आगे की शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ था, परंतु कुछ वर्षों बाद उन विषयों के बारे में जो अभी तक पूरी तरह समझाए नहीं गए थे अधिक जानने की इच्छा से उसने फिर से परमेश्वर से प्रकाश और बुद्धि मांगने का निश्चय किया। उन दिनों मैं दानियल 3 पूरे सप्ताह शोक करता रहा। मैंने कोई स्वादिष्ट रोटी नहीं खाई, ना मांस और ना ही दाखरस मेरे मुंह में गई, और मैंने तन पर बिल्कुल तेल भी नहीं लगाया। तब मैंने अपनी आँखें उठाई और देखा, और क्या देखता हूँ, सन के वस्त्र पहने एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी कमर उफाज के उत्तम सोने से कसी हुई थी। उसका शरीर भी बेरिल के समान था, उसका मुख बिजली की चमक के समान और उसकी आंखें आग के दीपकों के समान, और उसकी भुजाएं और उसके पांव रंग में चमकाए हुए पीतल के समान थे, और उसके वचनों की आवाज बहुतों की आवाज के समान थी। स्वयं परमेश्वर का पुत्र ही दानियल के सामने प्रकट हुआ। ये वर्णन वैसा ही है जैसा यूहन्ना ने दिया जब मसीह पटमोस के द्वीप पर उस पर प्रकट हुए। अब हमारे प्रभु एक अन्य स्वर्गीय दूत के साथ आते हैं ताकि दानियल को सिखाएं कि अंतिम दिनों में क्या घटित होगा। ये ज्ञान दानियल को दिया गया और हमारे लिए, जिन पर युगों का अंत आ पहुंचा है, प्रेरणा से लिख लिया गया। रिव्यू एंड हेराल्ड 8 फरवरी 1881।
अध्याय 10 के हिद्दे केल संबंधी मसीह के दर्शन में मसीह जल पर है और सन के वस्त्र पहने हुए हैं, और उलय के दर्शन में भी वो जल पर है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का दर्शन उलय और हिद्दे केल के दर्शनों में प्रस्तुत दर्शन से मेल खाता है, जहां सिस्टर वाइट ये पहचानती हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र से कम कोई व्यक्ति नहीं है। जब वो प्रकाशित वाक्य 10 के स्वर्गदूत की पहचान करती है तो वो कहती है कि वो स्वर्गदूत यीशु मसीह से कम कोई व्यक्ति नहीं था।
प्रकाशित वाक्य 10 का स्वर्गदूत अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर उसकी शपथ खाता है जो युगानुयुग जीवित है। ये अध्याय 12 में मसीह के दर्शन से जुड़ा है, जहां वो अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हैं और उसकी शपथ खाते हैं जो युगानुयुग जीवित है। प्रकाशित वाक्य 10 में वो जल और स्थल दोनों पर है। नदी के दोनों तटों के बीच जो है वो पानी है, और डैनियल ने तटों के बीच एक मनुष्य की आवाज सुनी, इसलिए वो आवाज पानी पर स्थित उस मनुष्य से आई, और वो आवाज उलाई नदी के जल की ध्वनि थी।
और पहले महीने के 24वें दिन, जब मैं महान नदी सेस्केराम के किनारे था जो हिद्देकल है, तब मैंने अपनी आंखें उठाई और देखा, और देखो एक पुरुष जो सन के कौतेद्र पहने हुए था, जिसकी कमर उफाज के उत्तम सोने की करधनी से कसी हुई थी। उसका शरीर भी बेरिल के समान था और उसका मुख बिजली के दर्शन जैसा, और उसकी आंखें आग के दीपकों जैसी, और उसकी भुजाएं और उसके पांव रंग में चमकाए हुए पीतल के समान थे, और उसके वचनों का स्वर बहुतों की आवाज के समान था। परंतु तू हे दानियेल, इन वचनों को बंद कर दे और इस पुस्तक पर मोहर लगा दे अंत के समय तक। बहुत लोग इधर उधर दौड़ेंगे और ज्ञान बढ़ेगा। तब मैं दानियेल ने देखा, और क्या देखता हूँ कि दो और खड़े हैं, एक नदी के किनारे के इस ओर और दूसरा नदी के किनारे के उस ओर। और उनमें से एक ने उस सन के चारक वस्त्र पहने हुए पुरुष से, जो नदी के जल के ऊपर था, कहा, इन अद्भुत बातों के अंत तक कितना समय होगा? तब मैंने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को सुना जो नदी के जल के ऊपर था। उसने अपना दाहिना और बाया हाथ आकाश की ओर उठाकर उसकी शपथ खाई जो सदा जीवित है, कि यह एक काल, दो काल और आधा काल तक होगा। और जब वो पवित्र लोगों की शक्ति को चूर चूर कर चुका होगा, तब ये सब बातें पूरी हो जाएंगी।
मैंने सुना परंतु समझा नहीं। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत क्या होगा? उसने कहा, दानियेलो, तू अपने मार्ग पर चला जा, क्योंकि ये वचन अंत समय तक बंद और मुहर बंद है। अनेक शुद्ध किए जाएंगे, उजले किए जाएंगे और परखे जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करेंगे, और दुष्टों में से कोई समझ नहीं पाएगा, परंतु बुद्धिमान समझेंगे। दानियेल 10:6-12:30-12:30।
शिनार की महान नदियां, जैसा कि सिस्टर व्हाइट उन्हें पहचानती हैं, दोनों ही एक ऐसे दर्शन से जुड़ी हैं जिसमें मसीह जल पर खड़े होकर बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी वाणी बहुत से जलों की ध्वनि के समान है। दोनों दर्शनों में कितने समय तक का प्रश्न पूछा जाता है? दोनों नदियां दानियेल के अध्याय 8 के प्रश्न और उत्तर में भी प्रस्तुत हैं, जो एडवेंटिज्म का केंद्रीय स्तंभ और नींव है। वहां दोनों नदियां 7 समय के प्रतीक हैं, पवित्र स्थान और सेना दोनों के बिखराव और रौंदे जाने के। दोनों नदियां परमेश्वर की ताड़ना की छड़ी के रूप में अपनी भूमिका पूरी करती हैं, और तत्पश्चात प्रथम स्वर्गदूतों के मिलेराइट इतिहास में प्रवाहित हो जाती हैं, जहां विलियम मिलर ने अपना पहला भविष्य सूचक रत्न खोजा, जो लैव्य व्यवस्था 26 में 7 समय की रेखा थी। दोनों नदियां 2022 वर्षों के दो बिखराव का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो अश्शूर और बाबुल के दो सिंहों द्वारा संपन्न हुए, जिनका प्रतीक टाइग्रिस और यूफ्रेटिस है, और निस्संदेह लिया और राहेल द्वारा भी, जो रिबका की भतीजियां थीं। रिबका, जिनका वाचा विवाह इसहाक के 40 वर्ष के होने पर हुआ, जैसा कि उत्पत्ति 23:20 में लिखा है। मिलर ने केवल यहूदा के दक्षिणी राज्य के विरुद्ध 7 पार के बिखराव को प्रस्तुत किया, जो 1844 में 2 वर्षीय भविष्यवाणी के साथ पूर्ण हुआ। 1856 में 7 बार की नई दाखरस ने उसी बिखराव को उत्तरी राज्य पर सुतंचा नेम में समाप्त होता हुआ पहचाना। विलियम मिलर की पहली भविष्योक्तिपूर्ण खोज के रूप में यूफ्रात नदी का जल प्रथम स्वर्गदूत के इतिहास में अल्फा सिद्धांत के रूप में आया। उलाई नदी का जल तीसरे स्वर्गदूत के साथ आया। मिलर की अल्फा खोज उलाई नदी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए 7 बार थी, और हायरम एडसन की ओमेगा खोज हिद्देकेल नदी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए 7 बार थी। 2520 प्रत्येक राज्य के लिए समान अवधि की लंबाई को दर्शाता है। परंतु उन अवधियों का आरंभ और अंत एक दूसरे से 46 वर्ष के अंतर पर पड़ता है। एसएफ 97 या अंत का समय और प्रकाशित वाक्य 14 के प्रथम स्वर्गदूत के आगमन को चिह्नित करता है। एसएफ 97 असीरिया के संघ द्वारा उत्तरी राज्य पर लाए गए बिखराव के 2520 वर्षों की पूर्ति है। 1884 सात काल की पूर्ति है जो दक्षिणी राज्य पर आई और जिसका प्रतिनिधित्व बाबुल के संघ द्वारा किया गया है। दो नदियां प्रथम और द्वितीय स्वर्गदूतों के संदेशों के इतिहास के दो छोर के समान हैं। यह इतिहास 22 अक्टूबर 1884 को तीसरे के आगमन के साथ समाप्त हुआ, जब प्रतिरूपात्मक प्रायश्चित दिवस पर सातवीं तुरही और जुबली की तुरही दोनों फूंकी गई।
तब तुम सातवें महीने के 10वें दिन अर्थात प्रायश्चित के दिन जयंती की तुरही बजवाओ और अपने सारे देश में तुरही का नाद कराओ। लेव्य व्यवस्था 25:9।
सातवीं तुरही का बजना मसीह के उस कार्य का प्रतीक है जिसमें उन्होंने अपने देवत्व को मानवत्व के साथ संयोजित किया, और ये उलय नदी के दर्शन के 3300 वर्षों द्वारा निरूपित है। और जुबली की तुरही का बजना उस भूमि की वाचा का प्रतीक है जो टूट गई और परमेश्वर की प्रजा पर आ पड़ी, जिसे दानियेल ने मूसा के शाप और शपथ कहा और जिसे मूसा ने परमेश्वर की वाचा का झगड़ा कहा।
हाँ, समस्त इसराइल ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है, यहाँ तक कि वे भटक गए ताकि तेरी वाणी का पालन न करे। इसलिए शाप हम पर उंडेला गया है और वो शपथ भी जो परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। दानियेल 9:11।
मूसा की व्यवस्था में जिन शाप और शपथ का उल्लेख है वे लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 के 7 गुना है। शपथ के रूप में अनुदित शब्द वही हिब्रानी शब्द है जिसे लेव्य व्यवस्था में 7 गुना के रूप में अनुदित किया गया है। वाचा की शपथ अध्याय 25:7 को तोड़ने के लिए जो शाप है वो अध्याय 26 में प्रतिपादित है, जहां मूसा उस शाप को वाचा का विवाद ठहराते हैं।
तब मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना और दंड दूंगा, और मैं तुम पर ऐसी तलवार लाऊंगा जो मेरी वाचा के विवाद का पलटा लेगी, और जब तुम अपने नगरों के भीतर इकट्ठे हो जाओगे तब मैं तुम्हारे बीच महामारी भेजूंगा और तुम शत्रु के हाथ में सौंप दिए जाओगे। लेव्य व्यवस्था 26:24-25।
प्रभु ने 733 ईसा पूर्व में उत्तरी राज्य पर असीरिया के सिन की तलवार छोड़ दी ताकि उन्हें शत्रु के हाथ में सौंपकर दंडित करे। 46 वर्ष बाद 777 ईसा पूर्व में दक्षिणी राज्य ने मूसा के शाप का अनुभव किया। मूसा का शाप साचा का विवाद है। 46 वर्षों तक मेसोपोटामिया के सिन्नों को परमेश्वर ने सेना को हटाने और रौन डालने के लिए प्रयोग किया। उस 46 वर्षीय अवधि के अंत में नबूकदनेस्सर ने पवित्र स्थान को नष्ट कर दिया। दानियेल अध्याय 8 के पद 13 में दानियेल के प्रश्न में उल्लेखित सेना अपने शत्रुओं द्वारा 46 वर्षों की अवधि में दास बना ली गई, जिसका समापन पवित्र स्थान के विनाश के साथ हुआ, और वही पवित्र स्थान पद 13 में रौंदे जाने वाला दूसरा विषय था। जब वे नदियां 17:98 और 18:34 में क्रमशः पहुंचीं, तब एक सेना एक मंदिर के रूप में एकत्र की जा चुकी थी, क्योंकि सेना एक शरीर है और शरीर एक मंदिर है। उस अवधि के अंत में 46 वर्षों में निर्मित मंदिर को देवत्व और मानवता के विवाह में स्वर्गीय मंदिर के साथ संयुक्त होना था। विवाह दो मंदिरों के बीच होता है, और जिसे परमेश्वर जोड़ता है उसे अलग नहीं किया जाना है। टाइग्रिस का जल 70:98 तक पहुंचा और यूफ्रेटिस का जल 1814 तक पहुंचा। तीसरे स्वर्गदूत के आने से ठीक पहले दूसरा स्वर्गदूत आया, और उसके बाद 12-17 अगस्त 1814 को न्यू हैम्पशायर के एक्सेटर में हुई कैंप मीटिंग में मध्यरात्रि की पुकार का संदेश उंडेला गया। एक्सेटर का अर्थ है जल का दुर्ग, और उस कैंप मीटिंग में मैसाचुसेट्स के वाटरटाउन से आए एक समूह द्वारा लगाए गए अलग तंबू में एक नकली सभा आयोजित की गई थी। सिस्टर व्हाइट के अनुसार एडन से उद्गमित जल संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्र में ज्वारीय लहर के रूप में फैलने ही वाले थे। वो भूकंप जिसने उस ज्वारीय लहर को जन्म दिया एडन की वाटिका में तब आया
जब शैतान ने मानव जाति पर विजय प्राप्त की, जिससे एडन में भूकंपीय उथल पुथल हुई और जिसकी लहरें मिलेराइट इतिहास की मध्य रात्रि की पुकार तक पहुंची। वही ज्वारीय लहर 144,000 के इतिहास में मध्य रात्रि की पुकार पर उमड़ पड़ती है और आदम के पाप के भूकंप से शुरू हुई वो लहर प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के रविवार के कानून के भूकंप तक पहुंची थी है। मसीह की वाणी अनेक जलों की वाणी है और वे जल मिलकर अंतिम वर्षा का संदेश बनाते हैं। यशायाह और उसका पुत्र शेआर याशूब 7वें अध्याय के 3रे पद में ऊपरी नहर के तालाब पर खड़े हैं। 144,000 की मुहरबंदी के समय में अंतिम वर्षा का संदेश प्रस्तुत करते हुए वहां मूर्ख और दुष्ट राजा आहाज पर यशायाह की घोषणा ये है कि प्रभु आहाज पर अश्शूर के राजा सनहेरिब के जल भेजेगा और उसका जल गर्दन तक चढ़ाएगा।
और प्रभु ने मुझसे फिर कहा, क्योंकि इस प्रजा ने शिलो आ के धीरे बहने वाले जल को अस्वीकार किया है और रीजन तथा रैमलिया के पुत्र में आनंद मानती है, इसलिए अब देखो प्रभु उन पर नदी के प्रबल और प्रचुर जल को चढ़ा लाता है, अर्थात अश्शूर का राजा और उसका सारा वैभव, और वो अपनी सब धाराओं पर उमड़ आएगा और अपने सब किनारों को लान जाएगा, और वो यहूदा से होकर निकलेगा, वो उमड़ेगा और आगे बढ़ जाएगा, गले तक पहुंच जाएगा, और उसके पंखों का फैलाव तेरे देश की चौड़ाई को भर देगा, हे इम्मानुएल। यशाया 8:5-8।
अहाज ने उन जलधाराओं को अस्वीकार कर दिया जो प्रभु द्वारा भेजी गई थी, इसलिए प्रभु ने अहाज को अश्शूर की जलधाराएं भेजी। अहाज रेजिन और रेमलाया के पुत्र के गठबंधन में आनंदित हुआ। अहाज आनंदित होता है एक नकली अंतिम वर्षा के संदेश में जिसका प्रतिनिधित्व रेजिन और रेमलाया का पुत्र करते हैं। रेजिन और रेमलाया का पुत्र जो पैक है उत्तरी राज्य का राजा यशाया और उसके पुत्र का एक नकली प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। मूर्ख और दुष्ट राजा आहाज इसराइल के 10 उत्तरी गोत्रों और सीरिया द्वारा दर्शाए गए गठबंधन में आनंदित होता है जो रविवार के कानून पर कलीशया और राज्य के अवैध संबंध का प्रकार प्रस्तुत करता है। आहाज आनंदित होता है क्योंकि लज्जा और आनंद दो विपरीत भावनाएं हैं जिनका प्रयोग प्रेरणा अंतिम वर्षा पर होने वाली बहस में प्रतिनिधित्व किए गए लोगों को संबोधित करने के लिए करती है। जब यिर्मयाह ने छोटी पुस्तक खाई तो वो उसके हृदय का आनंद और हर्ष बन गई, और योअल हमें बताता है कि परमेश्वर की प्रजा कभी लज्जित नहीं होगी। लाओदिकियाई होने के नाते आहाज अंधा है, इसलिए वो झूठे जल संदेश में आनंदित है और यशाया के सच्चे जल संदेश को अस्वीकार कर रहा है। उसे उत्तर के राजा की बाढ़ द्वारा दर्शाए गए नकली अंतिम वर्षा संघ पर भरोसा करने के लिए लज्जित होना चाहिए, परंतु उसने शिलोआह का संदेश ठुकरा दिया है। यशाया अध्याय 8 में शिलो का संदेश अंतिम वर्षा का संदेश है। शिलो का खुंड नए नियम में सिलोआम के खुंड के रूप में पहचाना गया है। इब्रानी या यूनानी में उसका अर्थ भेजा हुआ होता है। मसीह का चला जाना इसलिए लाभदायक था कि वो पवित्र आत्मा को भेज सके। यशाया और आहाज शिलो के खुंड पर है, और परीक्षा इस बात पर टिकी है कि यशाया और उसके पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए शिलो के खुंड पर विश्वास किया जाए या रेजिन और रेमलिया के पुत्र पर विश्वास किया जाए। आहाज दो जलों के बीच चुन रहा है, शिलो का जल या अश्शूर के राजा का जल। आहाज ने रेजिन और रेमलिया के पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए गठबंधन और संदेश में हर्षित हुआ, और इसलिए अपने निर्णय के समय धीरे धीरे बहने वाले जल के स्थान पर उसने उजाड़ की बाढ़ प्राप्त की। उसका ये न्याय रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व करता है जब उत्तर का राजा बाढ़ की तरह पूरी दुनिया पर उमड़ पड़ता है। ये रविवार के कानून से आगे भी ऐसा ही रहता है जब आधी रात की पुकार की बाढ़ भी संसार पर छा रही होती है। अहज उत्तरी 10 कबीलों और सीरिया के गठबंधन में आनंदित होता है, और इस प्रकार कलीसिया और राज्य को मिलाने वाले संदेश में भी आनंदित होता है, जैसा कि परमेश्वर के वचन में वर्णित हर अवैध गठबंधन द्वारा दर्शाया गया है। यशाया एक फिलाडेल्फियाई का प्रतिनिधित्व करता है और आहाज एक लाओदिकियाई का
जब मसीह सिलोआम के कुंड पर एक लाओदीकियाई अंधे मनुष्य को चंगा करता है, तब वह यशाया की गवाही को अपनी गवाही से जोड़ता है।
और जब यीशु वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। तब उसके चेलों ने उससे पूछा, गुरु, किसने पाप किया, ये मनुष्य या उसके माता पिता, कि ये जन्म से अंधा पैदा हुआ?
यीशु ने उत्तर दिया, न तो इस मनुष्य ने पाप किया है न उसके माता पिता, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हों। जब तक दिन है, मुझे उसके काम करना है जिसने मुझे भेजा है। रात आने वाली है जब कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं संसार में हूं, मैं संसार का प्रकाश हूं। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और थूक से कीचड़ बनाया और उस कीचड़ से उस अंधे मनुष्य की आंखों पर लेप किया और उससे कहा, जा सिलोआम के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ है भेजा हुआ। वो गया और धो आया और देखते हुए लौट आया।
तब पड़ोसी और वे जिन्होंने पहले उसे अंधा देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं है जो बैठकर भीख मांगता था? कुछ ने कहा, यही है। दूसरों ने कहा, ये उससे मिलता जुलता है। पर उसने कहा, मैं ही हूं। तब उन्होंने उससे कहा, तेरी आंखें कैसे खुली? उसने उत्तर दिया और कहा, जो यीशु कहलाता है, उस मनुष्य ने कीचड़ बनाया और मेरी आंखों पर लगाया और मुझसे कहा, सिलोआम के कुंड पर जाकर धो ले। सो मैं गया और धोया और मुझे दृष्टि मिल गई। यूहन्ना 9:22-21 के आगर।
अंधा मनुष्य, मूर्ख और दुष्ट राजा आहाज के साथ इस बात में परखा जाता है कि वे अपना भरोसा सिलोआम के तालाब पर रखें या अश्शूर की बाढ़ पर। अंधा मनुष्य जानता है कि वो अंधा है, पर आहाज धनी है, धन संपत्ति में समृद्ध है और उसे किसी बात की कमी नहीं लगती। आहाज पिछली वर्षा के तालाब पर वो मूर्ख कुंवारी है और अंधा मनुष्य एक बुद्धिमान कुंवारी। भेजे हुए जल या जो जल अश्शूर से भेजे गए हैं, यही परीक्षा है। तालाब वो स्थान है जहां जल एकत्र होता है और भविष्यद्वाणात्मक रूप से तालाब वो जगह है जहां विविध धाराएं, नदियां, छोटी धाराएं, समुद्र, महासागर, झीलें, वर्षा और ओस, ये सब जल जो मसीह की वाणी का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं। अंतिम वर्षा का तालाब उस जल से बनता है जो ऊपरी तालाब से बहता है। ये तालाब परीक्षा के संदर्भ में अंतिम वर्षा के संदेश का प्रतिनिधित्व करता है। आहाज ने धीमे धीमे बहने वाले जल को अस्वीकार कर दिया, परंतु उस अंधे मनुष्य ने तालाब से जुड़े संदेश के प्रति आज्ञाकारिता दिखाई। यीशु ने अपनी दिव्यता का कुछ अंश, जिसे थूक के रूप में दर्शाया गया है, लेकर उसे मिट्टी के साथ मिलाया, जो दिव्यता और मानवता के उस मेल का प्रतिनिधित्व करता है जिसे मसीह परम पवित्र स्थान में संपन्न करते हैं। मसीह ने जमीन पर थूका और अपनी लार से मिट्टी गूंथ कर लेप बनाया। उन्होंने दैवीयता और मानवता के संयोजन के संदेश का उपयोग करके उस अंधे व्यक्ति की आंखों का अभिषेक किया। दैवीयता और मानवता के संयोजन द्वारा दर्शाया गया संदेश 1838 का संदेश है और इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को लाओदीकिया की अवस्था से फिलाडेल्फिया की अवस्था में परिवर्तित करना है। परंतु इस संदेश के लिए मानवीय सहभागिता आवश्यक है। उन्हें कुंड तक जाना होगा, फिर धोना होगा। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से नैर गए हैं। परंतु यीशु ने कहा कि न इस अंधे मनुष्य ने पाप किया, न उसके माता पिता ने। यीशु उस अंधे की स्थिति से दोषारोपण का प्रश्न हटा रहे हैं और उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं जिसे प्रभु की महिमा के लिए उठाया गया है। और बाइबल की भविष्यवाणी में जिस भविष्यवाणिया मनुष्य को इस उद्देश्य से उठाया जाता है कि परमेश्वर के काम प्रकट हों, वही ध्वज है, ऐसा समुदाय जो उन स्त्री पुरुषों से मिलकर बना है जिन्होंने लाओदीकिया से फिलाडेल्फिया की अवस्था में परिवर्तन किया है। यही ध्वज वो स्थान है जहां परमेश्वर के कार्य प्रकट होते हैं, क्योंकि उसका कार्य देवत्व को मानवत्व के साथ एक करना था, जिसका प्रतिरूप गारे के लेप से दिखाया गया।
और उस कार्य की उपलब्धियां वे लोग हैं जिन्होंने न केवल लाओदिकियाई संदेश सुना परंतु उसमें दिए गए नुस्खे का पालन भी किया। उस अंधे के लिए नुस्खा था, जाकर धो लेना। जब वो देखने लगा तो उसे परमेश्वर की महिमा करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं रही। उसके चारों ओर की परिस्थितियों ने ही वो कर दिया। ये मसीह के आगमन से प्रारंभ हुआ और उसके बाद मसीह का कार्य हुआ। मनुष्य के संदर्भ में स्वर्गीय पवित्र स्थान में मसीह का अंतिम कार्य ये है कि वह मनुष्य को सूखी हड्डियों की घाटी की अवस्था से या गलियों में मरे पड़े होने की दशा से या चमगादड़ की तरह अंधे होने की दशा से रूपांतरित कर दे। उसका अंतिम कार्य अपनी प्रजा को अपने स्वरूप में फिर से रचना है और यही वही कार्य है जो उसने किया जब उसने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसमें जीवन का श्वास फूंका। अंतिम कार्य वही पहला कार्य है क्योंकि उसने पहले मिट्टी को बनाया और फिर उस मिट्टी का अपनी आत्मा के जीवन से अभिषेक किया। आदम के साथ आत्मा उसका श्वास थी, अंधे व्यक्ति के साथ वो जल था। हेक्रिजे की सूखी हड्डियों की घाटी में वो एकत्र करने वाला संदेश था जिसने शरीर को रचा। फिर चार पवनों का संदेश उस शरीर पर फूंका गया और तब वो एक शक्तिशाली सेना की तरह खड़ा हो गया। जब वो अंधा मनुष्य अभी भी अंधा ही था तब यीशु ने उसे देखा और उसके पास गए। वो अपने शिष्यों द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के संदर्भ में उस अंधे मनुष्य के पास आते हैं जिससे उन्हें इस उदाहरण के लिए उचित भविष्यवाणी संबंधी पृष्ठभूमि स्थापित करने का अवसर मिलता है। परमेश्वर के कार्य बाइबल में गवाहियों की अनाखर्स धाराओं में एक भविष्यवाणी संबंधी प्रतीक है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के कार्य की हर अभिव्यक्ति अंतिम वर्षा के समय पूरी होती है। यीशु इस कथा को उस अंतिम संदेश के परिप्रेक्ष्य में रख रहे हैं जिसका प्रतिनिधित्व मलाकी की अंतिम पदों में एलिया करता है। माता पिता और अंधा बच्चा पापी ठहराए नहीं जाते क्योंकि ये परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का समय है और उस समय माता पिता के हृदय और बच्चों के हृदय वर्तमान मुद्दे को देखने के लिए फिराए जाएंगे। मुद्दा ये है कि क्या अंधा लाओदिकियाई मनुष्य एक अभिषिक्त फिलाडेल्फियाई मनुष्य में बदल गया है। यही मुद्दा अंतिम वर्षा के समय माता पिता और बच्चे के सामने आता है क्योंकि वही न्याय का समय भी है और न्याय का समय अब्राहम की वाचा ताकि भविष्यवाणी के अनुसार तीसरी और चौथी पीढ़ियों के दौरान पूरा होता है। अंधा मनुष्य अंतिम यानी चौथी पीढ़ी है और उसके माता पिता तीसरी पीढ़ी हैं। उस काल में एलिया का संदेश परिवारों को ऐसी परिस्थितियों में बाल देता है जहां उन्हें सिलोआम के कुंड के संदेश को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ता है। मूर्ख और दुष्ट राजा आहाज ने उस कुंड के संदेश को अस्वीकार कर दिया परंतु अंधे मनुष्य ने उसे स्वीकार किया। मलाकी का एलिया संदेश प्रभु के महान और भयानक दिन से पहले श्राप के संदर्भ में स्थापित है। जब यीशु ने उस प्रसंग की रूपरेखा बनाई जिस पर हम विचार कर रहे हैं तो उन्होंने चमत्कार के उद्देश्य के अपने सार में ये शामिल किया कि उन्हें उसी समय काम करना था क्योंकि एक समय आएगा जब कोई मनुष्य काम नहीं कर सकेगा। जिस कार्य का उन्होंने उल्लेख किया वो दिन के उजाले में होता है और कार्य का अंत रात के रूप में दर्शाया गया है। उनका संकेत अनुग्रह काल के समापन की ओर है। जब वो अपने न्याय के कार्य को पूरा कर लेता है तो वो अपने याजकी वस्त्र उतार देता है और प्रतिशोध के अपने वस्त्र पहन लेता है। जब वो खोए हुए लोगों को धार पाए हुए लोगों से अलग करने का वो कार्य पूरा कर लेता है तब उद्धार का कार्य समाप्त हो जाता है, अनुग्रह काल बंद हो जाता है और अब रात का समय है जब कोई मनुष्य काम नहीं कर सकता। मसीह का संदेश केवल एक अंधे मनुष्य के लिए लाओदिकिया का संदेश ही नहीं था बल्कि वो एलिया का संदेश था जो अनुग्रह काल के समाप्त होने की निकटता के संदर्भ में रखा गया था और यही आत्माओं के उद्धार के लिए कार्य करने की मसीह की पवित्र प्रेरणा है। पहले मसीह अंधे ने व्यक्ति के पास गए, फिर मरहम तैयार करके लगाया, फिर उस काम के लिए निर्देश दिए जो उस अंधे व्यक्ति को स्वयं करना था। और उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि जैसे ही वो उस काम को आरंभ करता है उसकी दृष्टि बहाल हो जाती है। एक बार जब उसे दृष्टि मिल जाती है तो वो एक अंधे लाओदिकियाई से एक फिलाडेल्फियाई में रूपांतरित हो चुका होता है। उन दोनों कलीसियाओं का रूपांतरण काल प्रारंभ में 1856 से 1863 तक पूर्ण हुआ।
वो काल गेहूं और खरपतवार के अलगाव का और 144,000 की अंतिम महरबंदी का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें बाद में एक पताका की तरह ऊंचा उठाए जाते हैं। अंधा व्यक्ति जैसे ही लाओदिकियाई से फिलाडेल्फियाई बना, तुरंत ही सार्वजनिक ध्यान का केंद्र बन गया। अंधा व्यक्ति 144,000 है और दुष्ट और मूर्ख राजा आहाज पूर्व वाचा के लोग हैं, जिन्हें प्रभु के मुंह से उगल दिया जाता है। इतिहास के उसी बिंदु पर यीशु या तो अपनी लार से अपनी नई वाचा के लोगों का अभिषेक कर रहे हैं, या वे अपनी पुरानी वाचा के लोगों को अपने मुंह से उगल रहे हैं।
हम इन विचारों को अगले लेख में आगे बढ़ाएंगे।
आगामी संकट।
अचूक सटीकता के साथ अनंत परमेश्वर सब राष्ट्रों का लेखा रखता है। जब तक वो पश्चाताप के आह्वान के साथ अपनी दया प्रदान करता है, ये लेखा खुला रहता है। परंतु जब परमेश्वर द्वारा निर्धारित एक सीमा पार हो जाती है, तब उसके क्रोध की कार्यवाही आरंभ होती है। तब ये लेखा बंद हो जाता है, ईश्वरीय धैर्य समाप्त हो जाता है। अब उनके लिए दया की याचना नहीं की जाती। भविष्य दृष्टा ने युगों के पार दृष्टि डालते हुए अपने दर्शन में हमारे समय को देखा। इस युग के राष्ट्रों को अभूतपूर्व कृपाएं मिली हैं, स्वर्ग की सर्वोत्तम आशीषें उन्हें दी गई हैं। परंतु बढ़ता हुआ अभिमान, लोभ, मूर्ति पूजा, परमेश्वर का तिरस्कार और घोर कृतघ्नता उनके विरुद्ध दर्ज है। वे परमेश्वर के साथ अपना लेखा जोखा तेजी से समेट रहे हैं। वे दिन तेजी से निकट आ रहे हैं जब धार्मिक जगत में गंभीर उलझन और भ्रम होगा। अनेकों देवता और अनेकों स्वामी होंगे। हर तरह के सिद्धांतों की हवाएं चलेंगी और शैतान देवदूत के वस्त्र पहने हुए, यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी धोखा देने का प्रयास करेगा। सच्ची भक्ति और पवित्रता पर किया जाने वाला व्यापक तिरस्कार उन लोगों को जिनका परमेश्वर से जीवन संबंध नहीं है, उसकी व्यवस्था के प्रति अपनी श्रद्धा खो देने की ओर ले जाता है। और जैसे जैसे देवीय व्यवस्था के प्रति अनादर अधिक प्रकट होता जाता है, उसके पालन करने वालों और संसार तथा संसार प्रेमी कलीसिया के बीच की विभाजन रेखा और अधिक स्पष्ट होती जाएगी। एक वर्ग में परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति प्रेम बढ़ता है, उसी अनुपात में दूसरे में उनके प्रति तिरस्कार बढ़ता है। महान मैं हूँ अपनी व्यवस्था का औचित्य सिद्ध कर रहा है। वो तूफानों, बाढ़ों, आंधियों, भूकंपों में और स्थल तथा समुद्र के खतरों में उन लोगों से बोल रहा है जो उसकी व्यवस्था को अमान्य ठहराते हैं। अब समय है कि उसकी प्रजा सिद्धांत के प्रति स्वयं को सच्चा दिखाए। हम महान और गंभीर घटनाओं की दहलीज पर खड़े हैं, प्रभु द्वार पर हैं। जैतून के पहाड़ पर उद्धारकर्ता ने उन दृश्यों का वर्णन किया जो इस महान घटना से पहले होने वाले थे। तुम युद्धों और युद्ध की अफवाहों के विषय में सुनोगे, उसने कहा। जाति जाति के विरुद्ध उठेगी और राज्य राज्य के विरुद्ध उठेगा, और स्थान स्थान पर अकाल, महामारियां और भूकंप होंगे। ये सब तो पीड़ाओं का आरंभ है। यद्यपि यरूशलेम के विनाश के समय इन भविष्यवाणियों की आंशिक पूर्ति हुई, तथापि उनका अधिक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग अंतिम दिनों में होता है। यूहन्ना और अन्य भविष्यद्वक्ता भी उन भयावह दृश्यों के साक्षी थे जो मसीह के आगमन के चिन्हों के रूप में घटित होंगे। उन्होंने युद्ध के लिए सेनाओं को एकत्र होते देखा और भय से लोगों के हृदय बैठते देखे। उन्होंने पृथ्वी को अपने स्थान से हटते, पर्वतों को समुद्र के बीचों बीच ले जाए जाते, उसकी लहरों को गरजते और उफनते, और उन लहरों के उफान से पर्वतों को कांपते हुए देखा। उन्होंने परमेश्वर के क्रोध के कटोरे खुलते देखे और महामारी, अकाल और मृत्यु को पृथ्वी के निवासियों पर आते हुए देखा। पहले ही परमेश्वर के रोकने वाली आत्मा संसार से वापस ली जा रही है, और चक्रवात, तूफान, समुद्र और स्थल पर आने वाली आपदाएं तेजी से एक के बाद एक घटित हो रही हैं। विज्ञान इन सब की व्याख्या करने की कोशिश करता है। हमारे चारों ओर गहराते हुए वे चिन्ह जो परमेश्वर के पुत्र के निकट आगमन का संकेत देते हैं, उनके वास्तविक कारण के बजाय किसी और कारण को ठहरा दिए जाते हैं। मनुष्य उन प्रहरी स्वर्गदूतों को नहीं पहचान पाते जो चारों पवनों को रोके हुए हैं, ताकि वे तब तक न बहें जब तक परमेश्वर के दासों पर मुहर न लग जाए। परंतु जब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को पवनों को छोड़ देने की आज्ञा देगा, तब उसके प्रतिशोधी क्रोध का ऐसा दृश्य प्रकट होगा जिसका वर्णन कोई कलम नहीं कर सकती। एक संकट हम पर आ पड़ा है, लेकिन इस गंभीर आपात स्थिति में परमेश्वर के सेवकों को स्वयं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यशाया, यहेजकेल और यूहन्ना को दी गई दृष्टियों में हम देखते हैं कि स्वर्ग पृथ्वी पर घटित हो रही घटनाओं से कितनी निकटता से जुड़ा है। हम उन लोगों के प्रति परमेश्वर की देखभाल देखते हैं जो उसके प्रति निष्ठावान हैं। ये संसार बिना शासक के नहीं है। आने वाली घटनाओं की योजना प्रभु के हाथ में है। स्वर्ग के महामहिम ने राष्ट्रों की नियति और अपनी कलीसिया के मामलों को भी अपने ही संरक्षण में रखा है। परमेश्वर ने अंतिम दिनों में क्या होने वाला है ये प्रकट कर दिया है, ताकि उसके लोग विरोध और क्रोध के तूफानों के सामने डटकर खड़े रहने के लिए तैयार हो सकें। जिन लोगों को उनके आगे आने वाली घटनाओं के विषय में चेतावनी दी गई है, उन्हें आने वाले तूफान की शांत प्रतीक्षा में बैठ नहीं जाना चाहिए, ये सोचकर अपने आप को दिलासा देते हुए कि संकट के दिन प्रभु अपने विश्वास योग्यों को शरण देगा। हमें अपने प्रभु की प्रतीक्षा करने वालों के समान होना है, न कि निष्क्रिय अपेक्षा में, बल्कि अडिग विश्वास के साथ लगनपूर्वक कार्य करते हुए। अब ये समय नहीं कि हम अपने मन को गौण महत्व की बातों में मग्न होने दें। जब लोग सो रहे होते हैं, तब शैतान सक्रिय रूप से प्रबंध इस प्रकार कर रहा है कि प्रभु के लोगों को न दया मिले न न्याय। रविवार का आंदोलन अब अंधकार में अपना रास्ता बना रहा है। नेता वास्तविक मुद्दे को छिपा रहे हैं, और जो बहुत से लोग इस आंदोलन से जुड़ते हैं, वे स्वयं नहीं देखते कि अंतधारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसके दावे मृदु हैं और ऊपर से मसीही प्रतीत होते हैं, परंतु जब यह बोलेगा तब यह अजगर की आत्मा प्रकट करेगा। आसन्न संकट को टालने के लिए अपनी पूरी शक्ति से सब कुछ करना हमारा कर्तव्य है। हमें लोगों के सामने वास्तविक प्रश्न रखना चाहिए और इस प्रकार अंतरात्मा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले उपायों के विरुद्ध सबसे प्रभावशाली विरोध प्रस्तुत करना चाहिए। हमें शास्त्रों की खोज करनी चाहिए और अपने विश्वास का कारण बताने में समर्थ होना चाहिए। भविष्यद्वक्ता कहता है, दुष्ट दुष्टता करेंगे और दुष्टों में से कोई समझेगा नहीं, परंतु बुद्धिमान समझेंगे। महत्वपूर्ण भविष्य हमारे सामने है। उसकी परीक्षाओं और प्रलोभनों का सामना करने और उसके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए महान विश्वास, ऊर्जा और दृढ़ता की आवश्यकता होगी, परंतु हम महिमापूर्ण विजय के लिए प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जागृत, प्रार्थनाशील और विश्वास से भरपूर कोई भी आत्मा शत्रु की चालों में नहीं फंसेगी। समस्त स्वर्ग हमारे कल्याण में रुचि रखता है और हमारी ओर से उसकी बुद्धि और सामर्थ्य की मांग की प्रतीक्षा करता है। प्रत्येक विरोधी प्रभाव, चाहे वो प्रकट हो या गुप्त, का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया जा सकता है, न बल से न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा से, कहता है सेनाओं का प्रभु। परमेश्वर आज भी उतना ही इच्छुक है जितना प्राचीन काल में था कि वो मानव प्रयासों के माध्यम से कार्य करे और निर्बल साधनों के द्वारा महान कार्य संपन्न करे। हम संख्या की अधिकता से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को यीशु के प्रति पूर्ण समर्पण करके विजय प्राप्त करेंगे। अब जब दया अभी भी ठहरी हुई है और जब यीशु हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, तो आइए हम अनंत काल के लिए पूरी तरह से तैयारी करें। सौदर्न वॉचमैन, 25 दिसंबर 1906।